उन सबसे मेरी सत्ता न्यारी और मैं स्वरूप सत्ता में रहता हूँ, तो वो ये भी परिणाम जो इंद्रा जी प्रणाम उसमें तीनों का ही समावेश हो जाता है। तीसरा ऐसा है कल और उसके समय कार्य के आधार से उसका विस्तार भी देखेंगे। देखिए जी ने समय दृष्टि ज्ञानी से ही प्रतिमान प्रत्याख्या लागू इतना लागू होते हैं, जिसको प्रतिमान नहीं अपेक्षा गए उसके लिए कोई मान्य नहीं रखते। फिर भी विशुद्ध परिणाम हो तो वो बराबर जितराजी का दुष्ट कोई दोष लगा हो तो अपने आलोचना करता है ऐसा करता है वो एक स्तुति का परिणाम हो सके। खड़े घर तो विज्ञान ज्योति प्रकट होते ही उस जीव को अरे मैंने अज्ञान दशा में कैसे कैसे प्रणाम किए थे हेतु हो और वो तो विश्व भाव प्रतिकल ख्याल में और यहाँ तो शुद्ध आत्मा का श्रेय दिया तो वर्तमान का भी हो गया भूत का भी होगा भविष्य का भी होगा। इस प्रकार के समस्त बोला के प्रणामों का ध्यान अतीत में किए हुए प्रणामों के प्रति क्या हो गया ममत्व का एकत्व का ध्यान, वर्तमान में हो गए उनके प्रति ममत्व एकत्व का ध्यान और आगामी भविष्य में होंगे उनके ममत्व एकत्व आदि का ध्यान। इन जातों में 383 आदि जो है इस बात का उल्लेख किया गया है। लेकिन एक बात को इस प्रसंग पर बताने में याद आ गई कि एक नवम्बर 2014 में जिला वास अपने जैसा एक प्रक्रिया निकलती है भारत पर्टी नंबर कमेटी की सुरक्षा कमेटी, उसमें एक विश्व परिषद दूसरी करती है उन्हें ऐसा नियम पास कर दिया के बारे में इसलिए बताने में आ रहा है और उसमें उन्होंने ये दिया कि ये जो समय का संग्रह से कटे इसमें जो प्रतिक्रमण को विस्कुंभ कहा और अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा ये बिल्कुल गलत है। हमारे दुकानों में जाकर के चुनाव के दौरान सात पत्रों से देखा तो वहाँ को लिखा मिला प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है और अप्रतिक्रमण विस्कुंभ। तो मेरे को मेरे मित्र नाते बोला तो पत्र फोन आया और उन्होंने कहा इसमें आपका क्या कहना है, तो मुझे तुरंत याद आया ये दो गाथा लास्ट मोड का लिखा है 300 उसमें प्रतिमान प्रतिकरण और ये सबसे सब उनका चर्चा उसमें है कि ये मूल में है कि प्रतिक्रमण क्या है देश को और अप्रतिक्रमण अमृत को मुख्य करने चाह तो दो क्यों को छोड़ करके उस स्वभाव क्रिया में जाते हो परिणाम तो ये मुनि हो यानी तो धर्मात्मा जो भी हो पांचों वाला चौथे पांचों जो भी वैसे मकलूक को पांचों शहरों को ये क्या जीवन के ये भी आए आज गुरु जो पिछले आए था तो वो मैंने देखा। लेकिन वो गाथाएं भी है उसी टीका में अमृत चंद्राचार्य जो है 187 कलश के पूर्व में आने को लिखी हुई है कि जो जी अज्ञान दशा में डूब रहे हैं और ज्ञानी की देश में सुनकर थे और जो कई गुणी राज किया थी और उसमें वो नियम से तीन का एक सामाज करना प्रतिक्रमण करना भी जो उस व्यवहार का भी त्याग कर लेते हैं तो उनके लिए वो प्रतिक्रमण अमृत कुंभ और अप्रतिक्रमण विश्व कुंभ ऐसा कहकर के उन्होंने उसमें समझाया है। कई इसके बाद अलग अलग नाम है आत्मा के लिए कल्याण है श्री मंदिर कर्तृत्व वाली कार्य में बताए गए अकर्तृत्व भाव और सर्वेश्वर ज्ञान वाली कार्य में बताए गए अकर्तृत्व भाव में कोई प्रभाव रह गया है। अकर्तृत्व भाव तो जो है तो यही है और बिल्कुल जिस शैली में कर्ता कर्म के काल में बात है उसी शैली में सर्वेश्वर ज्ञान के काल में बात है। दोनों के अकर्ता स्वभाव और प्रतिपादन शैली दोनों में कोई अंतर नहीं है दोनों में ही है। चैतन्य और त्रिकाली जो कहे आदि एक ही मेरा अंतर है। चैतन्य का विशेषण त्रिकाली जो है अचेतन भी त्रिकाली जो होता है परमाणु जो है वो त्रिकाल कार्य करता ही नहीं धर्मांति धर्मांति सरकारी लोग बना लो प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है मैं चैतन्य हूँ तो मेरा भी स्वभाव सरकारी है। तो ये चैतन्य जो भाव है और कल्याणी गुरु का ये काल की अपेक्षा चैतन्य का विशेषण है। पर्याय से ही जन्म का स्वरूप होता है। वस्तु के दो अवयव हैं तो द्रव्य की दृष्टि से भी उसी वस्तु को नित्य कहा जाता है, तो पर्याय की दृष्टि से उसी वस्तु को अनित्य कहा जा सकता है, कहा जाता है और है भाषा की कार्य की उत्पत्ति में पांच परमाणु होते हैं। ये समय का सर्जन था इत्यादि की खोज की गाथा में प्रतिपादित होता है। फिर एक बात आती है तो वहाँ बाकी की बातें सब साथ में आई जाती है। मोक्ष प्रकाशन में पंडित गुरुवर जी ने इसका विशेष खुलासा किया है और शास्त्रीय अपेक्षा वगैरह में जम जस जमनी जैसे गिर आए जमनी कालू जैसा कार्य होता है जैसे यूनिक होता है इस तरह से वो सिद्ध किया जाता है। कहते हैं सहज प्राप्त है अल्पति जीव को आसान रास्ता बताइए, वो प्रकार की बताइए
बताई रहे।
सहज का मतलब ये है कर्ता परिणाम विकल्प नहीं होना, उसको सहज कहते हैं। देखो अपन ट्रेन में बैठते हैं तो मेरे ख्याल से कितना 8-10 हजार किलोमीटर की स्पीड से जाती है, जो भी हो 1000-2000 किलोमीटर की स्पीड से जाते हैं तो अपन दौड़ लगाते हैं, अपनी बॉडी को स्पीड से ही गमन करती है। हम लोग तो सब मंदिर में कोई कल्चर का वैसा हमारा प्रयत्न है वो कल में सहज हो रहा है उस स्पीड से जाने का। ऐसे वस्तु का प्रणमन बिना विकल्प के बिना किसी अपेक्षा के बिना प्लानिंग के बिना राज्य के सहज होता है। तो सबसे जन्म सहज काव्य है इसमें पोशाक का विशेष नहीं है बल्कि सम्यक पोशाक है। सहज होने में अपनी पुरस्कार है मेरे प्रश्न पूरे हो गए भाई जी बहुत सारे स्कूल है।
सबके 3-4 प्रश्न रह गए थे, उसमें एक प्रश्न यह था कि आगम का निश्चय क्या, आगम का व्यवहार क्या, अध्यात्म का निश्चय क्या, अध्यात्म का व्यवहार क्या। अब इस बात का उत्तर मैं गुरुदेव से शुरू करूंगा क्योंकि आज आगम और अध्यात्म का भेद यदि अपन समझ भी पाए हैं तो करें पूज्य गुरुदेव जी को। और पूज्य गुरुदेव जी ने जिस तरह से वस्तु व्यवस्था का भान करवाया, आज सुबह हर्षन भाई साहब अभय भाई साहब दोनों ही भाई का कह रहे थे कि अपना सौभाग्य रहा गुरुदेव के सानिध्य में रहने का। ऐसा बचपन में मेरे साथ भी हुआ जब हम सब बच्चे लोग गुरुदेव जी के पास जाते थे एकदम छोटे छोटे 6 साल के 7 साल के 8 साल के तत्वों का कोई समझ नहीं रहती थी लेकिन फिर भी गुरुदेव को एक समय छोड़ते नहीं। तो एक बार दोपहर के टाइम में जब गुरुदेव बच्चे लोग के साथ में आते हुए बैठते थे हम लोग 4-5 बच्चे थे उसके अंदर में गुरुदेव जी ने कहा समय बाद में स्वाध्याय चले थे तो कुनकुन आचार्य रखे उसे कुनकुन आचार्य आया सुमंद रोमन पास जाइए मैं क्या भी आई ना शास्त्र रेखा એટલે આપણા બધા જે આગમો છે ને એ બધા આચાર્ય ભગવંતોએ જે રચેલા છે ને એ અર્યંત અને સિદ્ધ પરમાત્માનું જેવું સ્વરૂપ છે અને એની ઓમ ઘણીમાં જેવું આવ્યું છે એવું શાસ્ત્રોની અંદર બાળકામ છે। એટલે કે આજે ત્યારના જે પંચ પરમેશ્વરી જો હૈ એ પંચ પરમેશ્વરી કે અંદર મેં જો વાણી નીકળતી હોય ઓમ ને સમાતી હૈ અર્યંત પરમાત્મા કી ઓમ ઘણી હૈ તો પંચ પરમેશ્વરી ને સમાતી હૈ વો કહેતે કલ જૈસે મેં પરમાત્મા કી બાત કહી થી ऐसे गुरुदेव श्री ने पंच परमेश्वरी में से ओम निकाला। कैसे आगम अध्यात्म की बात से बात मैं कहता हूँ कि सबसे पहले सिद्ध भगवान सबसे पहले अरियंत भगवान। तो अरियंत भगवान का पहला शब्द होता है अह, तो अरियंत का अह, फिर दूसरा नम सिद्धांत सिद्ध भगवान, तो सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं तो अशरीरी का भी अह, तो अरियंत भगवान का अह और अशरीरी का अ प्लस अ इज इक्वल टू अ प्लस अ इज इक्वल टू अ। फिर उपाध्याय, फिर आचार्य, आचार्य का आ तो अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। उपाध्याय का उ, आ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ, साधु भगवान माने मुनि, मुनि का म माने ओ प्लस ओम, ओ म तो ये हो गया ओम ध्वनि, जिसके अंदर में सारे जिनागम की रचना होती है। तो ऐसी बात बच्चे लोग को गुरुदेव श्री समझाया करते थे, जैसे पंच परमेश्वर की महिमा है। अभी यहाँ आगम का निश्चय और आगम का व्यवहार सबसे चलो को, जिसके अंदर में द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था की बात है, ये आगम का निश्चय है। तो राग जीव की पर्याय में होता है, ये आगम का व्यवहार है। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा और आगम का निश्चय, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से भिन्न है तो गुण पर्याय व द्रव्य में है, तो ये आगम का निश्चय है। और राग जो होता है वो जीव की पर्याय में ही होता है, ये आगम का व्यवहार है। अध्यात्म का निश्चय और अध्यात्म का व्यवहार। अभी और एक प्रसंग गुरुदेव श्री का बताऊं तो मध्य प्रदेश से कुछ मुख सुबह आए थे सुंदर में, और संस्कार की शक्ति ज्यादा चलती थी, और पहला पैराग्राफ चलता था। अब उसके अंदर में तो शुद्धात्मा की बात, निश्चय आत्मा की बात के अलावा कुछ चलता नहीं था। प्रवचन पूरा हुआ, गुरुदेव अपने रूम में गए तो मध्य प्रदेश से आए मुमुक्षु भाइयों ने गुरुदेव को विनती का कि साहब आज तो आपने सारी की सारी अध्यात्म की बात की, कुछ व्यवहार की बात नहीं है। तो गुरुदेव ने दूसरे दिन प्रवचन के अंदर में आप भाई आया था ना, कहता था कि व्यवहार की बात ले हमारे, तो शू के व्यवहार की बात, तो क्या अध्यात्म की बात तो शुद्धात्मा की जो बात है वो तो अध्यात्म का निश्चय है। शुद्धात्मा की जो बात है वो अध्यात्म का निश्चय है, और उस शुद्धात्मा के लक्ष्य से जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का जो जन्म होता है वो तो अध्यात्म का व्यवहार है। और गुरुदेव से बात कह दी, फिर वो गुरुदेव के पास में रहता था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात व्यवहार कहाँ से है, तो निश्चय की बात है। तो गुरुदेव हंसे, बोला आप क्या चाहते हैं? बोले साहब आप, हम लोग तो सब पहले पहली बार आए आपके पास में, हम ये सुनना चाहते हैं कि चंद्रमोल का भक्षण नहीं होना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे को पता नहीं था कि मुसलमानों की सभा, जैनों की सभा में रात्रि भोजन के त्याग की चर्चा नहीं होती है, चंद्रमोल नहीं खाने की चर्चा नहीं होती है, तो मुसलमानों की सभा में उपदेश दिया जाता है। तो अपने गुरुदेव ऐसे थे जिन्होंने निश्चय व्यवहार का जो स्वरूप बतलाया वो इतना अद्भुत है, इतना अलौकिक है कि जीवन भर यदि जीव इस बात को संकोच चिन्ह कर ले तो शुद्धात्मा तक पहुंचे बिना नहीं रह सकता। तत्वज्ञान की व्याख्या क्या, अभी बाबू जी के लेख के माध्यम से तत्वज्ञान का ही सारा विषय चल रहा है कि श्रद्धा का श्रद्धेय कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, किस तरह से उसका दर्शन हो सकता है, उसको देखना वो दर्शन, उसका दर्शन वो सम्यक दर्शन, और दर्शन वो निश्चय दर्शन, ऐसा तत्व ज्ञान का जन्म किस तरह से हो, ये विषय ही चल रहा है। और बाकी के दो दिनों में भी बाबू जी के लेख के माध्यम से यही विषय अपना चलेगा। जे भगवान आत्मा नो कभी अनुभव थयो नथी तेमा श्रद्धा कई रीते अहम स्थापित करते है, तेने कई रीते ओळखते है, वो बात भी आज बाबूजी के लेख के अंदर में आ गई कि अज्ञान का अंत कैसे हो। ये बात का उत्तर ये सही में इसी का जवाब है कि अज्ञान का अंत कैसे हो, प्रबल अज्ञान के अंदर में अज्ञान का अंत कैसे हो ये बात ही उद्भव की नहीं है, ये ज्ञान के अंदर में ही अज्ञान का अंत कैसे हो, जिसने अज्ञान का स्वरूप जान लिया। अब अज्ञान का स्वरूप वो जानता जिसने ज्ञान का स्वरूप जान लिया, कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का स्वरूप यह है कि वो आत्मा को जानता हुआ परिणामता है, अबाल गोपाल सभी को सदा काल। तो इसने अज्ञान का स्वरूप जान लिया तब उसको प्रश्न होता है कि अज्ञान का अंत कैसे हो, और इस प्रबल अज्ञान का प्राणांतक की बात भी अभय भाई सब ने भी की, और अपना विषय के अनुसंधान में भी ये बात काफी अच्छी तरीके से की। ध्येय पूर्वक ध्येय अने अभिन्न ध्येय, ध्येय पूर्वक ध्येय माने ध्येय माने 320 गाथा और ध्येय माने 271 कलर, ध्येय पूर्वक ध्येय का पूरा विषय है। और गुरुदेव के शब्दों में कहूँ तो पर्याय की रहित जय ध्यान नु ध्येय छू, ज्ञान नु ध्येय छू, જ્યારે પર્યાયથી સર્વતા રહીત એવા ધ્રુવનું ધ્યેય થાય છે, પર્યાયથી સર્વતા રહીત જ્યારે ધ્રુવનું ધ્યેય થાય છે, ત્યારે પર્યાયથી સહિત આત્મા જ્ઞાનનું જ્ઞેય થાય છે. જબ આત્મા પર્યાય સે રહીત એસા આત્મા જ્ઞાન કા ધ્યેય બનતા હૈ, તબ પર્યાય સે સહિત આત્મા જ્ઞાન કા ધ્યેય બનતા હૈ. પર્યાય સે રહીત આત્મા ધ્યાન કા ધ્યેય બને, તબ હી પર્યાય સે સહિત આત્મા જ્ઞાન કા ધ્યેય બનતા. ઉસકે બિના જ્ઞાન કા ધ્યેય ભગવાન આત્મા એના દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ આત્મા જ્ઞાન કા ધ્યેય નહીં બન સકતા. ઉસકા વિધાન એક હી હૈ કે જબ પર્યાય સે રહીત આત્મા જ્ઞાન કા ધ્યેય બને, યાને કે મેં પરમાત્મા હું એસા ધ્યેય બને, તબ ઉસ ધ્યાન કે અંદર મેં ધ્યાન થોડા લંબા સે તો પર્યાય સે સહિત આત્મા સમ્ય જ્ઞાન કે અંદર મેં જ્ઞાન કા ધ્યેય બનતા હૈ. શ્રીમદજી કે શબ્દો મેં કહે તો સમ્યક એકાંત પણ અનેકાંત પણ સમ્યક એકાંત એવા નિજ પદની પ્રાપ્તિ સિવાય અન્ય હેતુ એ ઉપકારી નથી. તો અપન જીસ દ્રવ્ય પર્યાય કે જ્ઞાન કી ચર્ચા કરતે હૈ વો સાર્થક તભી હોતા હૈ જબ ધ્યાન કા ધ્યેય ભગવાન આત્મા બનતા હૈ. તો જ્ઞાન કા ધ્યેય યાને પૂરા આત્મા યાને કે અનેકાંત આત્મા યાને કે સમ્યક અનેકાંત યાને કે સ્યાદવાદ યાને કે સ્વયં શાસન કી અનુભૂતિ કા જન્મ તબ હોતા હૈ જબ પર્યાય સે રહિત આત્મા ધ્યાન કા ધ્યેય બનતા હૈ. અભી અભિન્ન ધ્યેય કી ચર્ચા કાફી વિસ્તૃત ચર્ચા હૈ, કાફી સૂક્ષ્મ ચર્ચા હૈ, કહી કહી ચલા ગઈ હૈ. ફિર કભી અવસર પે એ વિષય કો વિસ્તાર સે અપન લેંગે. અભી વો વિષય લેને કે લિયે કાફી સમય ચાહિયે, તો ઉસલિયે અભી ઇસકો નહીં લેતે. એક તરફ એમ કેવું છે કે દર સમયે સામાન્ય જ્ઞાન નો ઉત્પાદ થાય છે અને તે જો સ્વ તરફ ગયે તો સમ્યક જ્ઞાન. બીજી તરફ કહે છે કે આબાલ ગોપાલ સૌને પોતાનો આત્મા નિરંતર જાણવામાં આવી રહ્યો છે. આ બંને વચ્ચે નર કેવી રીતે છે? વાત યહ હૈ કે પ્રતિ સમય જો ઉપયોગ કા જન્મ હોતા હૈ વો ઉપયોગ સામાન્ય જ્ઞાન હૈ, ઉસકે અંદર મેં સમ્યક જ્ઞાન ઓર મિથ્યા જ્ઞાન એસા વિભાગ નહીં હોતા. એ સામાન્ય જ્ઞાન કા જન્મ હોતે હી વો જિસકો વિષય કરે, સ્વભાવ કો વિષય કરે તો સમ્યક જ્ઞાન, તર્ક વિષય કરે તો મિથ્યા જ્ઞાન. મને વિષય ભેદ કે સમ્યક જ્ઞાન યા મિથ્યા જ્ઞાન નામ કો પાતે હૈ. જન્મ સભ્ય જ્ઞાન કા ભી નહીં હોતા ઓર સમ્યક મિથ્યા જ્ઞાન કા ભી નહીં હોતા. જન્મ જ્ઞાન કા હોતા હૈ ઓર સમય ભેદ બિના સ્વ તરફ યા પર તરફ ઝુકતા હુઆ વિષય ભેદ સે વો સમ્યક જ્ઞાન યા મિથ્યા જ્ઞાન એસા નામ પાતા હૈ. ઉસી તરહ સે અબાલ ગોપાલ સભી કો સદાકાલ ભગવાન આત્મા અનુભવ મેં આ રહા એ સામર્થ્ય કી બાત હૈ, ક્યોંકિ પર્યાય કી વ્યવસ્થા કો ભી દેખા જાય. અભી અપન શ્રદ્ધેય કી ચર્ચા કરતે હતે, સમ્યક દર્શન કે વિષય કી ચર્ચા કરતે હતે, લેકિન યદિ પ્રમાણ કી અપન ચર્ચા કરે, દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુ કી ચર્ચા કરે તો પર્યાય દ્રવ્ય સે કથનચિત ભિન્ન ભી હૈ ઓર કથનચિત અભિન્ન ભી હૈ. જબ પર્યાય પલટતી હૈ તો કથનચિત ભિન્ન હૈ ઓર વો પર્યાય અભિન્ન હૈ તો ઉસકે અંદર મેં દ્રવ્ય હોના ચાહિયે. યદિ પર્યાય દ્રવ્ય સે અભિન્ન હૈ ઓર ઉસ પર્યાય કે અંદર મેં દ્રવ્ય ન હો તો પર્યાય દ્રવ્ય સે અભિન્ન કેસે? અભિન્ન હૈ તો દ્રવ્ય હોના ચાહિયે. તો ઉસલિયે કે અબાલ ગોપાલ સભી કો સદાકાલ વો વર્તમાન વર્ત કી પર્યાય મેં સામાન્ય રૂપ ભગવાન આત્મા જાનને મેં આ રહા. અબ ઉસકા લક્ષ વહાં પે નહીં હૈ, દ્રષ્ટિ વહાં પે નહીં હૈ. ગુરુદેવ શ્રી તો એ કહેતે થે કે પર્યાય કે અંદર મેં આત્મા કી વિદ્યમાનતા, મને ત્રિકાલી રૂપ પ્રગટ વિદ્યમાન તો હૈ લેકિન પ્રગટ હોતી હુઈ પર્યાય કે અંદર મેં ભગવાન આત્મા કી વિદ્યમાનતા કરના ક્યા. તો ગુરુદેવ શ્રી એક દ્રષ્ટાંત દેતે થે બાઇનોક્યુલર કા, બચ્ચે લોગ કો સમજાને કે લિયે જબ ગુરુદેવ શ્રી શિખરજી ગયે થે તો શિખરજી કે અંદર મેં એક જૈન મ્યુઝિયમ હૈ, પર ઉસ જૈન મ્યુઝિયમ કે અંદર મેં એક બાઇનોક્યુલર હૈ જો સબકે ઉપર કી ટોંક કા એક બોર્ડ દિખાઈ દેતા. અબ નીચે કા વો બાઇનોક્યુલર સે દેખીએ તો બસ એક પટ્ટી જેસા દિખતા, કુછ નહીં દિખતા. ફિર દૂસરા દૂરબીન આપકો દિખાતા ઉસકે અંદર મેં વો બોર્ડ દિખતા હૈ, ફિર તીસરા દૂરબીન સે દિખાતા ઉસકે અંદર મેં કુછ લિખા હુઆ દિખતા હૈ, ચોથા દૂરબીન કે અંદર મેં ગૌતમ ગંધર સુખ લિખા હુઆ સાફ સાફ પડાઈ જાતા હૈ. અબ ગુરુદેવ શ્રી એ કહેતે થે કે પર્યાય કે અંદર મેં જાયજ કી મૌજૂદગી હૈ લેકિન સામર્થ્ય રૂપ હૈ. જબ જાયજ કા જ્ઞાન ઓર શ્રદ્ધાન હોતા હૈ તો ઇસકા એનલાર્જમેન્ટ હોતા હૈ जैसे उस बोर्ड का हुआ। एनलाइटमेंट होता और कुछ नहीं होता, भगवान आत्मा जी तो मौजूद ही है। जब ज्ञान के ऊपर जानना और उसका श्रद्धान होता है तो परिणाम के अंदर में उसका एनलाइटमेंट होके स्वानुभव, स्व संवेदन, सम्यक दर्शन, निर्विकल्पता का जन्म हो जाता है। पर्याय नु ध्रुव नहीं होत, ध्रुव नु ध्रुव हो। पर्याय जब द्रव्य को अपनी समर्पणता करती है तो यह नहीं कहती कि मैं पर्याय हूँ, यह कहती है कि मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो मैं परमात्मा हूँ कहने वाली पर्याय नहीं होती, परमात्मा होती है। उसलिए अनुभव के अंदर में पर्याय को द्रव्य का ज्ञान नहीं होता, उसके अंदर में ध्रुव मात्र होता है। जब ध्रुव मात्र होता है तो अनुभूति के अंदर में आत्मा होता है, अनुभूति के अंदर में ध्रुव होता है, उसमें द्रव्य पर्याय का भेद विकल्प नहीं होता। ये पर्याय और द्रव्य ऐसा ज्ञान नहीं होता, आत्मा को आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा को आत्मा का अनुभव होता है, जिसको परिणामी कहते हैं। अपरिणामी प्लस परिणाम इज इक्वल टू परिणाम, जिसको परिणामी आत्मा कहते हैं, जिसके अंदर में जो कुछ भी है वो आत्मा है। स्पेशली उसका कहने का जो अपने बात आई थी उसका मतलब यह है कि पर्याय ध्रुव में अहम नहीं करती, वो अपने आप को ध्रुव देखती है, ध्रुव मानती है, ध्रुव जानती है, ये ध्रुव का ध्रुव है। पर्याय का गोत्र बदल गया है। निश्चय नहीं का विषय भगवान आत्मा नहीं है। देखिए ये बात जो आती है ना, वो किस तरह से किस बात को समझाने के लिए, किस बात की स्पष्टता के लिए की जाती है, ये बात को हर श्रोता का भी फर्ज बनता है कि बात जहाँ से कही जाती हो वहाँ से उसको समझी जाए। क्योंकि हर बार ये संभव नहीं होता कि हम अभी इस अपेक्षा से इस बात को स्पष्ट करने के लिए ये बात इस तरह से है, उस तरह से नहीं है, ऐसा संभव नहीं होता। तो ये श्रोताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब अपन सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन का विषय ऐसे गंभीर विषय की चर्चा करते हैं, तब अपना ये उत्तरदायित्व होता है कि बात कहाँ से की गई उसका पूरे पूरा ख्याल रखे। कहने का मतलब ये था कि निश्चय नहीं किसको कहते हैं, निश्चय नहीं का स्वरूप क्या है, जो ये कहता है कि वस्तु नया चीज है। एकमात्र नहीं को नहीं कहा गया, परमार्थ नहीं कहा गया, शुद्ध नहीं कहा गया, सत्य नहीं कहा गया, भूतार्थ नहीं कहा गया। जो मात्र ध्रुव को देखे, मैं ध्रुव, और ध्रुव कहता है तो कि नया चीज है, और नया चीज है उसका नाम निश्चय नहीं है, जिसके अंदर में कोई अपेक्षा नहीं होती, ऐसा ध्रुव स्वभाव है। निरपेक्ष ध्रुव स्वभाव को बतलाने वाली निश्चय नहीं है। तो इसलिए निश्चय नहीं का विषय भगवान आत्मा नहीं है, जो नया चीज है, या निश्चय नहीं का विषय ऐसा आपने आज कहा, तो उसका अर्थ यही था कि जब निश्चय नहीं कहा तब जाता है कि जब वस्तु को अपने स्वभाव से देखा जाए, परमार्थ वस्तु को परमार्थ से देखा जाए, भूतार्थ से देखा जाए, सत्यार्थ से देखा जाए, जैसा स्वभाव है उसको निरपेक्षता से देखा जाए, तो उसको निश्चय नहीं कहते हैं। निश्चय नहीं वस्तु जैसी है ऐसी बतलाती है, इसलिए निश्चय नहीं का विषय भगवान आत्मा नहीं है ऐसा कहा गया। उसका मतलब कि वो भगवान आत्मा को विषय नहीं बनाती, हो भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा कहती है। विकल्प के अंदर में भी, ज्ञान के अंदर में भी जो विकल्प चलता है उसमें मैं परमात्मा हूँ ऐसा चलता है। और जब अनुभूति हो जाती है तो अनुभूति से पहले वो निश्चय नहीं का जन्म हुआ, निश्चय नहीं का पक्ष था ऐसा कहा जाता है। अनुभूति के पहले आत्मार्थियों को जो तत्व की व्यवहार श्रद्धा कही जाती है, वहाँ श्रद्धा का मतलब सिर्फ समझ होता है कि श्रद्धा गुण की पर्याय होती है। ये विषय बाबूजी ने पूरा का पूरा अत्यंत स्पष्ट शब्दों के अंदर में ये विषय का स्पष्टीकरण किया कि पहले तो क्या होता है बताया ना, उसको निमित्त बनाकर फिर निमित्त तत्व को स्थित कर, पहले निमित्त बनाना, पहले सात तत्वों की व्यवस्था को समझना कि सात तत्व क्या, उसको माने ही नहीं, समझे ही नहीं, वो तो असत्या से अभूतार्थ है ही है, कभी अपने को उसको जानने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा आत्मार्थ ही नहीं होता। वस्तु की व्यवस्था के अंतर्गत द्रव्य में पर्याय की व्यवस्था, छह द्रव्यों की व्यवस्था, सात तत्वों की व्यवस्था, नौ पदार्थों की व्यवस्था, जड़ चेतन की भिन्नता की व्यवस्था, सारी की सारी उसके ज्ञान के अंदर में होना चाहिए। स्वाध्याय उसका नियमित खुराक होना चाहिए। यदि वो एक घंटा पूजन करता है तो 3 घंटा उसका स्वाध्याय होना चाहिए, 2 घंटा पूजन करता है तो 6 घंटा उसका स्वाध्याय होना चाहिए। ये सारी परिपाटी जो है, आज अपन 45 साल गुरुदेव श्री थे और आ रहे हो दूसरे 36 साल गए, तो 81 साल से गुरुदेव की वाणी अविरत बने चल रही है, उसको अपन नियमित सुन रहे हैं, तो ये हमारे जीवन के अंदर में शास्त्र स्वाध्याय के बिना तो अपना जीवन सोच ही नहीं सकते। पर ये सब कुछ होने के पश्चात यदि मूलभूत बात पे अपन नहीं आए तो शास्त्र स्वाध्याय स्वाध्याय नहीं। जैसे गुरुदेव श्री को कहा गया, चार ऑफ इंडिया में रहते थे, 3 साल 3 महीना 3 दिन वहां पर रहे, और जब स्वाध्याय मंदिर का जो प्रांगण है वो जगह ले ली गई और रामजी बापू जी ने जाके गुरुदेव को दिखाई ये जगह कि साहब यहाँ आप स्वाध्याय मंदिर बनाओ तू नहीं आप नियमित स्वाध्याय करते। गुरुदेव श्री का उत्तर क्या था, मारा माटे काई नहीं बनाओ तू, मारी कोई जवाबदारी नहीं, मारू मन थसे तो करे, नहीं मन थसे तो जंगल माटे हो गया। स्वाध्याय करने वाले वक्ता श्रोता को सुनाने के लिए नहीं सुनाते, वक्ता अपना स्वाध्याय। गुरुदेव श्री क्या करते थे कि हम तो अपना स्वाध्याय करते हैं, थोड़ा जोर से करिए, थोड़ा मोटे से करिए, हमारे समाज में हित फैल जाओ तो भले ही जाओ, हमने कई वांधो नहीं। तो वक्ता की जिम्मेदारी यह है कि वो अपना स्वाध्याय करे, अपने स्वभाव को भूटे, अपने स्वभाव को उज्ज्वल रखे। और श्रोता की जिम्मेदारी यह है कि जो बात जहाँ से कही गई हो वो स्वाध्याय के माध्यम से किस बात का एजेंडा है, क्या सिद्ध करना है, कहाँ पे ले चलना है, कहाँ से छुड़ाना है। अब जब ग्रहण त्याग से सुनिए तो शक्ति की बात चले तो क्या समझना, फिर ग्रहण त्याग की कोई चर्चा ही नहीं। ऐसा बात को जो विषय जो चल रहा है उसके अंतर्गत जो बात है उसको उसके तय में जाकर, उसके खुने में जाकर, उसके अंदर में जाकर, उसके गर्भ में जाकर, उसके तल में जाकर इस बात को तलाशनी है। अब 7 तत्वों का यदि स्वरूप ही नहीं जाना तो नहीं हो सकता। और 7 तत्वों को सम्यक दर्शन कहा हो व्यवहार श्रद्धा के अपेक्षा से निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कि 7 तत्वों को जानकर उसका अनेकपना और या एकपना, पुण्य पाप आश्रव बन समर निग्रह मोक्ष ऐसा अनेकपना या 7 तत्व ऐसा एकपना, उसको है ही जानकर पहले तो जाना तब तो है ही जानेगा, यदि जाने नहीं तो है कैसे करेगा। 7 तत्वों का स्वरूप को जानकर उसमें छिपी हुई आत्म ज्योति को उपादेय करके माने उसका लक्ष्य करके, उसमें अहम करके, उसमें एकत्व करके, उस पर्याय का जन्म ही नहीं होना, उसके तरफ लक्ष्य न जाए, हे पर्याय के ऊपर दृष्टि ही न जाए, उसको है कैसे। तो आज बाबूजी ने ये बात को अत्यंत स्पष्ट किया कि पहले निमित्त को बतलाने के लिए 7 तत्वों को व्यवहार श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा, लेकिन यहाँ से दृष्टि को खींच कर तो 7 तत्वों को अदृश्य करके, ये शब्द था 7 तत्वों को अदृश्य करके, उसकी निमित्तता को खींच कर उपादेय तत्व का लक्ष्य करके, तो बहुत ही अभूतपूर्व तत्व अपने को मिला है। जिनवाणी के चारे पड़खों से गुरुदेव ने वस्तु तत्व को स्पष्ट किया है। सोगानी जी बाबूजी लालचंद भाई जैसे पुरुष भी गुरुदेव के शासन काल में हुए, जिन्होंने अध्यात्म को अत्यंत स्पष्ट किया, गुरुदेव की वाणी को जन जन तक सही रूप में पहुंचाया, तो ये अपन थोड़ा सौभाग्य है। तो अपन इस बात को अच्छी तरीके से जहाँ से जो बात की जाती है वहाँ से उस बात को समझकर, श्रद्धा का मतलब सिर्फ समझ होता है ऐसा नहीं, श्रद्धा का मतलब श्रद्धेय के अंदर में लीनता होती है। समझना बुद्धिपूर्वक समझ लिया तो उसका क्या मतलब है। कल एक बात कही थी श्रीमद जी की, सांभवू समझू अने समावू, सुनना सुन के समझना और समझ के समा जाना, इसका नाम श्रद्धा है। व्यवहार श्रद्धा तब तक व्यवहार श्रद्धा नहीं कहलाती जब तक निश्चय श्रद्धा का जन्म न हो। निश्चय श्रद्धा का जन्म होने के पश्चात ही इस 7 तत्वों की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है।
सामान्य
समझना और समाना।
हाँ समाना, समझ लेना मना भी बुद्धि के अंदर में बैठ गई, धारणा में बात आ गई, शेर तम में आ गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। धारणा प्रयोग में काम में नहीं आती तो अनुभूति में काम में कहाँ से आएगी।
अपन उसको यहाँ कह सकते हैं कि देखना सुन प्रयोग कर दिया गया
हाँ।
और अंदर में समाने का जो प्रसाद नहीं हुआ वो ऐसे कर
गुरुदेव जी एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे हम लोगों को, बच्चे लोगों को, कि कोई घर के अंदर में मेहमान आवे, घर के अंदर में मेहमान आवे और कोई 7 साल की बेटी खड़ी हो सामने और माँ और बेटी को बोले कि जा बुआ को जाके बोले एक गिलास पानी लेके आवे। थोड़ी देर के बाद में वो बेटी वहीं पे खड़ी है, उसको पूछा गया बेटा तूने सुना नहीं? मैंने सुना पापा, आपने ऐसा कहा कि मेहमान आया एक गिलास बुआ को जाके बोलो एक गिलास पानी देने के। बेटा क्या भाई साहब आए हैं, गर्मी में आए हैं, पसीने से रेबजेब हो रहे, एक गिलास पानी लेके आओ। फिर थोड़ी देर बाद में देखे फिर वही की बेटा तुम्हें नहीं सुना? मैंने सुना पापा, आपने कहा बाहर से आए गर्मी में आए पसीने से रेबजेब हो गए। और इसको लौकिक के अंदर में अपन कितना सुनाते थे, सुनना उसको कहते हैं कि उसके बदल 2-3 साल की बच्ची है और वो अपनी बुआ को जाकर बोला भू पानी भी नहीं बोल सके भू, तो उसको अपन समझाते हैं। समझना ऐसा कहते हैं जो एक्शन में आ जाए, स्वरूप की लीनता की बात हो तो उसके अंदर में लीन हो जाए, उसका नाम समझना है। द्रव्य दृष्टि प्रकाश के बोल नंबर 250 में जो स्वरूप के झोलन की बात की है वो द्रव्य प्रिय के भेद ज्ञान की बात है या और बात है। इसके अंदर में सम्यक दर्शन का पूरी विधि सोगानी जी साहब ने 250 नंबर के बोल में पूरे विस्तार से बताई है। एक संपूर्ण अपने आप में एक पूरा विषय है जिसको डिटेल्स में लिए बिना समझाया नहीं जा सकता। अपने को यदि अवसर मिलेगा तो आधा घंटा इसके ऊपर कभी भी स्वाध्याय ले लेना। सम्यक दर्शन के विषय में परस्पर विरोधी धर्म नहीं होते इसके बारे में मुझे प्रश्न है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ रजनी का।
कभी एक अवसर खड़ा हुआ था, इसके संदर्भ में एक अपना बुक है गुजराती में पेज नंबर 18 उसके नाम से हिसाब है खरे का संग्राम धर्म रही की जो दृष्टि का विषय के अंदर दृष्टि के विषय के अंदर परस्पर विरोधी धर्म शामिल है ही नहीं। अभी हमारे तो विमानों के अंदर चर्चा हुई है कि परस्पर विरोधी धर्म, कभी परस्पर विरोधी धर्म का मतलब ऐसा कभी सोच रहे थे सब लोग कि जैसे कि एक है नीति राज्य वगैरह जो धर्म है वो सब धर्म युगल जो परस्पर विरोधी दिखते हैं वो सब धर्म जैसे कृष्ण शामिल है कि नहीं। अभी यहाँ पर ऐसा दिखता है कि द्रव्य प्रज्ञा ध्रुव श्रेणी परस्पर विरुद्ध अनंत धर्म एक परंतु प्रजाएं समान रूप से उपाय मानी है आश्रय करो श्रद्धा माना समावेश नहीं तो आगे विरुद्ध धर्म के सर्व पर्याय लोक है निर्दा विकास वगैरह विरुद्ध अनंत धर्म
धर्मों की गति की जो आवे तो दृष्टि धर्मों की अपेक्षा जो जोवामां आवे तो कारण के दृष्टि ना विषय ની અંદર માં અનંત ગુણાત્મક એક વસ્તુ તો કેટલો દ્રષ્ટિ નો વિષય છે દ્રષ્ટિ ના વિષય ની અંદર માં ભેદ નથી પડતો ભેદ દ્રષ્ટિ ના વિષય ની અંદર માં એક્સેપ્ટેડ નથી એની અંદર માં સ્વાભાવિક અભેદ અનેક ગુણાત્મક એક વસ્તુ એટલો દ્રષ્ટિ નો વિષય હોય છે। ધર્મો અને ગુણ એ બંને ની વચ્ચે આક્રો છે. ગુણ જે છે એ સ્વભાવ છે, ધર્મ જે છે એ ઘણી અપેક્ષા એવી ચર્ચાઓ જીનવાણી ની અંદર માં થઈ છે. પણ જ્યાં દ્રષ્ટિના વિષય ની વાત છે એની અંદર માં તો એક શુદ્ધાત્મા છોડીને, એક પરમાત્મા છોડીને, એક પરિણામી તત્વ છોડીને બીજું કઈ એની અંદર માં સમાતું નથી. વસ્તુની દ્રષ્ટિના વિષયની જે આખી વસ્તુ માટે તમે વાત કરો, આખા દ્રવ્યનું પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુની વાત કરો તો એની અંદર માં સામે નથી, પણ દ્રષ્ટિના વિષયની વાત કરો તો એની અંદર માં સામે નથી. ધ્યાન નું ધ્યેય એટલે શુદ્ધાત્મા, તો એ છોડીને બીજો કોઈ વિષય ધ્યાન ના ધ્યેય ની અંદર માં સમાતો નથી. દ્રષ્ટિ ના વિષય ની અંદર માં બીજો કોઈ વિષય, બીજો કોઈ ધ્યેય સમાતો નથી.
ધર્મ કેવા નહીં કારણ કે પદાર્થ ને
एक रूप है वो कर्म से, एक रूप है कर्म से, एक दृष्टि के कर्मों में जो नित्र ध्रुव स्वाम उसको रखा वो होगा। ये इनके स्पष्ट है। मेरी बात श्रीमन नरसिंह जी ने एक बार फोन पर तो उन्होंने बताया था कि उसको कहीं मिला है या गूगल से मेरे एक लाइन में कहा है कि यह भरत गूगल की बात नहीं है या वस्तु का मूल तत्व है कथा है वो ध्यान लेना ऐसा स्पष्ट है। जैसे अभी तक दोनों में चर्चा चलती है और उसमें ऐसा लगता है जो पैसाली है कार्पज है वो व्यक्तिगत उसका होना चाहिए तो उसका थोड़ा अपना चेतन की चेतन में भी बाबू ने वो बात सिखाया कि उस चेत में भी है ज्ञान के धरातल पर ज्ञान में पूर्ण पदार्थ का जो भी स्वरूप है उस सबको दुर्गम समाज है। लेकिन अब जल्दी जो है की बात होती है तो उसमें तो एक शुद्ध जीवन भाव परम मान्य भाव परम भाव द्वारा शुद्ध रिश्ते की बात भी उसमें रहती है। भारतीय दूसरा प्रश्न परिस्थिति में ये शुद्धात्मा क्या है और कैसे प्राप्त होता है। उन्होंने कहा अनंत धर्मों प्राप्त में इससे भी कभी नहीं करता की व्यक्ति के हृदय में धर्म है कि नहीं है। इससे मेरा फैसला सुप्रीम कोर्ट की मानसिक व्यवस्था है। मैं आपके विचार भी ये कह रहा हूँ कि अनंत धर्मात्मा आत्मा एक धर्मी है वो अनंत धर्मों का अभिन्न है। ऐसे शुद्ध ज्ञान वो अनंत नयात्मक है और अनंत नयात्मक शुद्ध ज्ञान के द्वारा अनंत धर्मात्मा एक कर्मी आत्मा जैसे कि वो ज्ञान प्रदान करते हैं एक वैसा अनुभव में प्राप्त होता है और अनुभव शब्द बहुत व्यापक है। उसमें श्रद्धा की मर्याद के सामने है, ज्ञान की मर्याद के सामने है, राष्ट्र की निंदा भी सामने है, आनंद भी शामिल है, ऐसी बहुत सी चीजें शामिल है। जब व्यक्ति के विषय की बात करें तो व्यक्ति के विषय में व्यक्ति चीनने को जरा नाम लिया जाए ये और क्या हो गया व्यक्ति के विषय में व्यक्ति चीनगी सारा फैसला नहीं हो जाता है। बाकी चीजें कहीं भी अपन सबको सोचना चाहिए। मैं कोई किधर से उधर जिसके प्लस या माइनस में और फिर जब ये चर्चा हुई थी उसके बाद में मुझे सिर्फ प्रश्न में और मुझे वो संदर्भ और वो गाथाएं याद नहीं है कौन सी गाथा का प्रश्न था तो उसने इस आशय की अर्थ निरस्त थे तो अखंड मन लक्ष्य होते हैं और एक बार ये आता है सब कुछ है चर्चा तीनों नहीं होती थी आपको जो समझदार से जीता एक ही सब से मंत्र करके खबर है ना तो उनको मुझे बताया पढ़ा लिखा यह धर्म वर्ग की बात नहीं है। यहाँ पर आपको धर्म ही रखता है अनेक धर्म बन जाते थे तो वो बाबू जी का ये कहना है अगर नेतृत्व को गोष्ठी करे नहीं तो उसका पढ़ा होगा तो अंत ही होगा। इसलिए दृष्टि के विषय में माने उसमें इनको कर्म भाव ध्यान शुद्ध निश्चय अभी दृष्टि कर रहे हैं अभी देखो मैं जी रहा हूँ सारे अगर मुझे लाइटिंग में पकड़ता हूँ तो भी रजीव भाई की गलत लिखी है। मैं सब समझा कि आप सब मेरे गलत है आपको कोई प्रश्न नहीं
जिन सबको समझ में आ गया है रजीव भाई को नहीं आया।
जबकि रजीव भाई रजनी जी का स्वयं उन्होंने विद्वान आ जाए नहीं करते उन्होंने प्रश्न साल आदि समय खराब की प्रश्नोत्तर बना रहे और बहुत गहरा है जो पक्षे मुझे भी बहुत लाभ मिलता है। उनकी बात करूँ गुरु जी ने कहा था क्या कहता कि भले वहाँ रहते हैं विदेश में लेकिन वो खोदे की बात करते हैं
तो उनका
सोचा नहीं जा रहा है हम सबको उठाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है आप लोग बने प्रश्न प्रश्नों का समाधान आएगा तो आपको सचमुच में कुछ लाभ मिलेगा। ये तो हायर लेवल की चर्चा के लिए घर में कहीं है चीजें ये तो आपका अभ्यास होगा तो उसको आनंद आएगा किस अभिष्ठा के गुरु कह रहे हैं कौन से अभिष्ठा के भाव उनका कह रहे
हैं। जी आपका एक प्रश्न है उसको कर लेंगे
टाइम हो गया
हम बल्पना हृदय में पधारी अंतर नु आनंद नु पावन करना कहां गुरुदेव क्षेत्र में महावीर बतावना श्री कहान गुरुदेव कहान गुरुदेव न परम परम उपकार लो भारत न भाग्य विधाना कहान गुरुदेव समय जतन न आविष्कार कहान गुरुदेव समय जतन रूपी क्षेत्री न संचार कहान गुरुदेव जय हो कहान गुरुदेव।